सप्तर्षि आश्रम के प्रसंग में सप्तर्षियों के अलोभ का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तर्षियों के आश्रम का वर्णन करूँगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशीरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उष्ण, भारद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कर्ण, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधि, तृणाम्बु, सबल, धौम्य, सतानंद, अकृतव्रण, जमदग्नि कुमार परशुराम, अष्टक तथा कृष्ण द्वैपायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तर्षियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और सोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फल स्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तर्षिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों ने भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, वह दुखी हुए और वहां पर मुनिवरों के सामने आकर बोले, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण कीजिए। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, द्रुत, दुग्धादि रस, तरह तरह के रत्न, सवर्ण, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गायें मेरे पास से लो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात का स्वयं जानते हुए भी तुम हमें क्यों लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री कुंभार या तैली होता है, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला होता है, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या होती है और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन हजारों हत्यागृहों का संचालन करता है। वह सौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ में मोहित होकर राजा के प्रतिग्रह का स्वीकार करते हैं, वह तामिस्त्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को देना। यह कहकर सप्तर्षि वन में चले गए। तदंतर राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों ने गुलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तर्षि अन्न के दाने बीनते हुए जब वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथों में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति
पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है, हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं, हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं। अतः इस बात का भली भांति हम लोग जानते हैं कि ये गुलर के फल स्वर्ण से भरे हैं। धन किसी लोक में आनंददायक होता है, लेकिन मृत्यु के बाद वह बड़े बड़े कटु परिणाम उत्पन्न करता है। अतः जो सुख और अनंत पद की इच्छा रखता है, उसे धन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह वो करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अकिंचनता और दूसरी और राज्य को तराजू पर रखकर तोला जाए तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का ही पलड़ा भारी होगा। इसलिए जितात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह करना श्रेष्ठ नहीं है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए यह इच्छा का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लेकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। भारद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नई बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई के वस्त्र में सूत का प्रवेश कर देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई संसार रूपी सूत्र का विस्तार कर देती है। तृष्णा का कहीं और एक छोर नहीं है, उसका पेट भरना बहुत ही कठिन है। वह सैकड़ों दोषों से ढोए फिरती है और उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णा का परित्याग करना सर्वथा उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है, उसी के लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में है, उसी के लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़ी से मढ़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होगा। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि कामना पूर्ण होती है, तो वो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींध डालती है। भोगों की इच्छा उपभोगों के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिक अधिक बढ़ती रहती है। भोगों की अभिलाषा कर रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख की प्राप्ति नहीं करता। चमदग्नि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसी का ग्रहण नहीं करते हैं, वह दानी पुरुषों के को मिलने वाला सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा के से धन लेता है, वह महर्षियों द्वारा शोक करने के लिए योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई दिया देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अरुंधति ने कहा, तृष्णा का अंत कभी नहीं है और उसका आदि भी नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष उसके लिए जिसका त्याग करना बहुत कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती और जो प्राणांतकारी रोगों के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही बड़ा सुख प्राप्त होता है। पशु सख बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन स्वर्णयुक्त फलों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में आए, जहाँ अकस्मात आए हुए सुनशुक नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे वन में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ही बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय सुनसुख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों को इस प्रकार प्रश्न पूछा, हे महर्षियों, आप सब लोग मुझे बताएं कि भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति, खंग, खग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों के पीड़ित होने पर भी मनुष्य को जो वेदना होती है, वह भी भूख की पीड़ा के समान मौत की मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबसे सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती है। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सुझाई सूच नहीं देता, उसका सारा अंग जलता और सूखता रहता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर माता, पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई, स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भलीभांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यांगंतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में भी ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न तो कोई पदार्थ हुआ है न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के आधार पर टिका है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं और सभी का आधार अन्न पर टिका हुआ है। इसीलिए अन्नदान करने वालों को अक्षय की प्राप्ति होगी और सनातन स्थिति मिलेगी। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब अन्न से ही सुलभ प्राप्त होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वां हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखे को अन्न का दान देता है, वह ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनता है, उसके पितृ आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भोगी भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वार्थ दर्शी पुरुषों के बताए हुए धर्म हैं। इनमें से भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम और पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित और तेजस्वी हो जाता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल है, उन सब की अपेक्षा दम का बहुत अधिक महत्व है। दम के बिना दान रूपी प्रक्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिन्होंने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भलीभांति दमन किया है उसको घर छोड़कर किस आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ जहाँ निवास करता है उसके लिए वही वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तमशील और आचरणों में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में रखा है और जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाए तो तथा घर में रहकर भी यदि पांच इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वही तपस्या है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है उस वीतराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तथा लोगों का मन बहलाने की जिसकी वृत्ति है उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों में की आसक्ति को दूर हटाता है और आध्यात्म तत्व के चिंतन में मन लगाता है और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चिंत है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता है और सुख से जागता है, वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है, उसके मन में हर्ष शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प और सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर पाते जितना संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस पक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहना चाहिए, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप करने से रोकता है। दंड सबसे दुर्जय होता है, वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला होता है। दंड ही मनुष्यों का शासक है और उसी पर धर्म टिका है। संपूर्ण आश्रमों और संपूर्ण भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। जो अपना अपमान होने पर भी क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठाता, उसी की दृष्टि में सुख और दुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका वो अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है, लेकिन उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वालों की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए दूसरों के धर्म की निंदा न करें। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वो व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है और वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार केवल दम पर है। छहों अंगों सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया है उसके सांख्य योग, उत्तम कुल में जन्म और तीर्थ स्नान सभी व्यर्थ है। योगवेत्ता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उसकी घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से उसके तप का क्षय होता है। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है, जैसे गौ घास और जल पीकर भी फिर से पुष्ट हो जाती है, उसी तरह ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर भी अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वाले स्वयं निंदा न करें, निंदा करने वालों की स्वयं निंदा न करें, अपने मन को रोके। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वह मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से शास्त्र की सील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन में ही रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? जो ब्रह्मा जी के बताए हुए गूढ़ उपदेश है, हमने धर्म का हृदय सार तत्व आपको बतलाया है। यज्ञ करने वाले लोग दूसरे रहे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं, लोक दूसरे हैं, और इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह करने वाले के लोग भी दूसरे हैं। यह सब भी परम सम्मानित है। क्षमा करने वाले का एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं, और वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्ति से हीन मानने बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों को बल क्षमा ही है, का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट यज्ञ आदि और पूर्त तालाब आदि खुदवाना दोनों फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप तप होम और पूजन करता है वह सब फटे हुए घड़े के जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल को उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्याय का पाठ करता है वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर कठिनाइयों को पार कर देता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यपद दामाध्याय का दूसरों से सुनता है वह ब्रह्म लोकों की प्राप्ति करता है तथा वहां से वह कभी नहीं नीचे गिरता। धर्म का सार सुनो और सुन के उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान और पराए धन को मिट्टी के ठेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा के समान जानता है वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्व देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है वही विद्वान है। जैसे धातुओं में स्वर्ण सबसे उत्तम है वैसे ही परोपकार सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वही सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण प्राणियों के हित को ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व की प्राप्ति करता है। पलत से जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुना सक के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्होंने बहुत ही विस्तृत जलाशय देखा जो पद्मों और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन्होंने मृणालों को न देखकर एक दूसरे से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं, ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया है। मृणाल कमल के फूल का मूल है। जब इस तरह कुछ पता नहीं चला तब सबके सब कश्यप जी के पास पहुंचे और कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की है उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगेगा। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने मद्य और मांस का सेवन करने और सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने के पाप का भागी रहेगा। वशिष्ठ जी बोले, जिसने उन मृणालों को चुरा लिया है वह ऋतुकाल के बिना मैथुन करके तीन में सोने एक दूसरे के जहां वहां जाकर अतिथि बनने और जिस गांव में एक ही कुआ है वहां पे निवास करने और ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगेगा। और ऐसे लोग जिन लोग को में जाना पड़ता है वहीं पर वह जाता है। भारद्वाज बोले, जिसने मृणाल को चुराया है वह सबसे सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी और सबसे डार रखने वाले चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति को प्राप्त करें। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की है वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले परस्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देखकर एक अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पापी रहे, पाप का भागी रहेगा। विश्वामित्र बोले, जो मृणाल चुरा ले गया है वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाले और परस्त्रीगामी की गति प्राप्त करेगा। जमदग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की है वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए गए हुए धन से अपनी आजीविका चलाने का, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करके परस्त्री से संबंध रखकर और गांवों की गौओं की बिक्री करने का पाप का भागी रहेगा। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हैं वो दूसरों का दास और जन्म जन्म क्रोधी रहेगा और वो सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन होगा। सुना सख ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की है वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियों से प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे और प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने कहा, सुना सुख, तुमने जो शपथ ली है वो द्विजाति मात्र को अभिष्ट ही है, अतः तुमने ही हमारे मृणालों की चोरी की है। सुना सख बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुख से धर्म की सुनने की इच्छा से मृणाल को छीन लिया था और छिपा लिया था, मुझे आप इंद्र समझे। हे मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त की है, अतः इस विमान पर बैठिए और हम लोग स्वर्ग चलते हैं। तब ऋषियों ने इंद्र को पहचान कर उससे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक वहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्ष की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को मिल जाता है जो 3 दिन तक उपवास पूर्वक पुष्कर के तट पर निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के 1 दिन तक, कल्प भर तक वहां पर निवास करता है।
Mm-hmm.